बाबा हमें कई बार इशारा देता है कि बच्चे 3 सर्टिफिकेट लो, स्वपसंद, लोकपसंद और प्रभु पसंद। स्वपसंद और लोकपसंद बन गए तो तीसरा तो मिल ही जाएगा। आज बाबा के वो रत्न हम सभी के बीच में बैठे हैं। सारा यज्ञ न सिर्फ मधुबन लेकिन यज्ञ निवासी ब्राह्मण परिवार सभी जिन्हों को हृदय से रिस्पेक्ट है, आदरणीय भ्राता राजू भाई के प्रति, तो ऐसी स्वपसंद के साथ साथ लोक पसंद आत्मा आज हमारे बीच में उपस्थित है। हम एक हाथ की स्नेह भरी ताली से आपका स्वागत करते हैं, स्वागत करते हैं। बचपन से ही आप बाबा के हैं। 1961 में कानपुर में जब आप बहुत छोटे थे तो बाबा के बने। 72 में आपने अपना जीवन यज्ञ में समर्पित किया। छोटेपन से ही आप दादियों की छत्र छाया में उनके अंग संग रहे और अपने अच्छे अच्छे सद्गुणों के कारण उन विश्व विभूतियों के बहुत ही विश्वास के पात्र बने। उसका प्रत्यक्ष प्रमाण दादी जी के पास जितने भी पत्र आते हैं, सारे भारत में से विश्व में से सोचो कितने लेटर आते होंगे किस्म किस्म के, उन सभी पत्रों को पढ़कर उनका उत्तर देने का कर्तव्य बाबा ने और दादियों ने आपको सौंपा है। हम प्रतिदिन जो मुरली में प्रश्न उत्तर वरदान स्लोगन आदि पढ़ते हैं वह भी आप ही निकालते हैं। पत्र पुष्प हर महीने आता है ना, पत्र पुष्प उसमें भी अव्यक्त इशारे हैं, दादी जी का पत्र है, वो भी बाबा आपके द्वारा लिखवाते हैं। आप ग्राम विकास प्रभाग के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं। आज हम सभी के बीच में हैं। विषय है परिस्थिति और समस्याओं के समय समाधान स्वरूप स्थिति। आदरणीय राजू भाई जी।
ओम शांति। बाबा ने हम सभी बच्चों को समाधान स्वरूप बना दिया। दुनिया तो समस्याओं का सागर है, जैसे सागर में बहुत सारी लहरें उठती हैं, उन लहरों को तो रोका जा नहीं सकता। ऐसे ही बाबा कहते हैं बच्चे ये संसार भी समस्याओं का सागर है। कलयुग के अंदर आप सब देख रहे हैं कि दिन प्रतिदिन हर छोटी बड़ी समस्या एक विकराल रूप लेती जा रही है, लेकिन बाबा ने जिनको अपना बनाया वो कभी उन समस्याओं की उलझन में नहीं जाते। ऐसा कोई है जो कहे मेरे आगे कोई भी समस्या कोई भी परिस्थिति अभी तक नहीं आई है? ऐसा कोई बैठा यहाँ? किसी न किसी रूप में कोई न कोई बात, क्योंकि माया के राज्य में हम सब रहे हुए हैं, विकारों का एक तरफ फुल फोर्स है, कलयुगी वातावरण के बीच में कई प्रकार के संस्कार स्वभाव, कुछ हमारे रहे हुए कर्म पिछले, और वायुमंडल के हिसाब से भी कभी संकल्पों में कभी संस्कारों में कभी पर्यावरण के कारण शारीरिक प्रॉब्लम्स, कोई हिसाब किताब के कारण भी कई प्रकार की बीमारियां इस वायुमंडल में बहुत सी भटकती हुई आत्माएं किसी न किसी रूप में एक दूसरे के प्रति ईर्ष्या द्वेष नफरत की भावनाएं, कहीं पर अपने संस्कारों से विघ्नाते, कहीं पर शरीर से विघ्नाते, कहीं पर संबंधों द्वारा विघ्ना रहे हैं, कहीं भटकती हुई आत्माओं के द्वारा, कई बार प्रकृति के द्वारा कुछ न कुछ ऐसी अति अधिक गर्मी अति अधिक ठंडी मौसम परिवर्तन के हिसाब से भी, और कभी सरकार के द्वारा ऐसी कई बातें आ जाती है। मैं समझता हूँ यज्ञ की स्थापना भी जब से हुई शुरू से आज तक का इतिहास अगर आप सभी ने पढ़ा होगा तो जैसे जब नाव चलने लगती है तो चलती हुई नाव को कई थपेड़े लगते हैं, जैसी भी हवा चलती है जैसी भी लहरें होती हैं उन लहरों के हिसाब से उस नाव को हिलना डुलना, ऐसे ही ये ईश्वरीय विश्वविद्यालय जब से बाबा ने स्थापित किया समय प्रति समय बहुत सारी समस्याएं और बड़े विकराल रूप से संस्था को तोड़ दें खत्म कर दें ऐसे से रूप से भी परीक्षाएं आई, लेकिन बाबा ब्रह्मा बाबा उन्होंने अपनी ऐसी अचल अडोल एक रस स्थिति बनाई, समाधान स्वरूप बन करके रहे। बच्चों के आगे भी ये वर्णन नहीं किया कि आज यज्ञ के आगे ये परीक्षा ही है ये समस्या है, क्योंकि बाबा को एक बहुत संपूर्ण निश्चय था, विजय निश्चित है, और निश्चित विजय है, लक्ष्य सामने है, और कल्प कल्प हम पहुंचे हैं, इसलिए बीच में जो भी डगमग करने वाली बातें आती हैं वो पार हो जाएंगी, कोई बड़ी बात नहीं है। क्योंकि अगर समस्याओं को अधिक सोचा जाए चिंतन किया जाए और किसी के आगे वर्णन कर दिया जाए तो अधिक सोचने और वर्णन करने से छोटी सी बात एक बड़ा रूप ले लेती, पहाड़ ले ले बन जाती। जिसके पास धैर्यता की शक्ति है, बहुत शांति से धैर्यता से बात आई, अपनी बुद्धि की सामर्थ्य के अनुसार, शक्ति के अनुसार, और एक बल एक भरोसा, एक बाबा में संपूर्ण विश्वास, उसके आधार से उन बातों की परवाह नहीं की, लेकिन ऐसे पार किया जैसे कोई खिलाड़ी के आगे कोई बाल आती है, मनोरंजन का अनुभव करता है। अगर कोई मैदान में उतर करके कहे मेरे सामने कोई बॉल ना आए तो अच्छा है, ऐसा होगा क्या? वो तो कहेगा आएगा तब तो हम कुछ नंबर बनेंगे, आगे बढ़ेंगे। तो इसलिए इनका आना स्वाभाविक है, आएंगी और आने दो, डरना नहीं। जिसके साथ स्वयं सर्वशक्तिवान सर्वसमर्थ बाप है, जिस नैया का खिवैया स्वयं भगवान है, जिस नैया में आप सब बैठे हैं, ये निश्चय है इसका खिवैया कौन है। और जब वो खिवैया है तो हिलने दो, डूलेगी हिलेगी लेकिन डूबेगी नहीं, ये तो निश्चय है ना। तो किसके आगे बातें नहीं आई, आने दो, आती हैं, सबके आगे आती हैं। लेकिन कई ज्ञान मार्ग में जब आते हैं, कईयों की जो भक्ति छूटती है, जिनमें श्रद्धा रखी बहुत समय से, उनसे थोड़ा किनारा होता है, तो लोग डरवा देते, कहते देखना तुमने ये छोड़ा है ना कुछ हो जाएगा। और अगर वो डर गया तो ऐसे भले नहीं हो, लेकिन अगर डर करके कोई कमजोर संकल्प क्रिएट कर लिया तो वो कमजोर संकल्प ही उसके लिए वो समस्या रूप बन जाता है। उसी रूप में कोई न कोई ऐसा, कभी बिजनेस में घाटा पड़ जाएगा, कभी कोई बीमारी आ जाएगी, कोई घर के अंदर कलह क्लेश हो जाएगी, झगड़े हो जाएंगे, कहेंगे देखा ज्ञान मार्ग में चले ना इसलिए ऐसा हो गया, डरवाएंगे लोग। लेकिन कोई भी बातें आती हैं, कुछ तो हमारे किए हुए कर्म हैं पिछले, और कुछ नए रास्ते पर हम सब चल रहे हैं। वैसे भी अगर नाव को हवा की दिशा में चलाया जाए, जिधर हवा चल रही है उधर तो सहज पार हो जाती है, और अगर उसको थोड़ा विपरीत दिशा में चलाया जाए तो क्या होता है, बहुत हिलोरे आते हैं। तो हम सब जिस नाव में बैठे ना, वो थोड़ी विपरीत दिशा से हम ले जा रहे हैं, क्योंकि कलियुग के अंदर तो कोई ने सोचा भी नहीं होगा कि घर गृहस्थ में रहना है, पारिवारिक जीवन में रहना है, आग कपूर साथ रहना है, लेकिन विकारों की आग न लगे, कोई सोच सकता है कलयुग में? तो आज बाबा ने हम सबको जब चारों ओर से फुल फोर्स है विकारों का, और उस विकारों की दुनिया में रहने वाले हम सब थे, उसी में ही लिप्त थे, और वहां से निकाल करके हमको दूसरी दिशा की ओर लिए जा रहा है, तो हम चलेंगे तो जरूर कुछ तो नैया हिलेगी, संबंधी भी थोड़ा नाराज होंगे, आज तक आप लोगों ने उनके साथ पिकनिक की, खाया पिया, मौज से रहे, हर बात में उनके साथ पार्ट बजाया, और आज आप बाबा के बच्चे बन करके कहते हैं हम तो आपके हाथ का नहीं खाएंगे, आपके घर में नहीं आएंगे, ऐसा करेंगे। अगर कहते नहीं है लेकिन थोड़ा किनारा भी कर लेते हैं तो विरोध नहीं होगा? बहुत सारा विरोध होता है, बहुत सारी बातें आती हैं, लेकिन बाबा ने जैसे पार किया, दादियों ने पार किया, हमारे महारथी भाई बहनों ने पार किया, पार तो सभी ने किया उन्हीं परिस्थितियों को, और पार करते करते खुद भी पार हुए और अनेकों को पार लगा दिया। तो अब हम सबसे बाबा ये चाहते हैं कि मेरे बच्चे समस्याओं में उलझ न जाएं, उलझने का कारण होता है, क्यों आ गई, कैसे आ गई, मेरे साथ ही ऐसा कैसे हो रहा है, क्यों, क्या, कैसे, अनेक प्रश्नों में अगर चले गए तो ये प्रश्न जो है ना उलझा देंगे, सूत मुन जाएगा। इसलिए बाबा कहते हैं बच्चे सदा एक ध्यान रखो, नथिंग न्यू, कोई नई बात नहीं है, कल्प कल्प हमने पार किया है। एक बार की बात मैं सुनाता हूँ, यज्ञ के ऊपर भी समय पर समय जब थोड़ा सा कोई विरोधी या कोई ऐसा भाई सरकार की नौकरी के हिसाब से कोई पोस्ट पर आ जाता है, एक बार यहाँ पर म्युनिसिपैलिटी से लेकर के जयपुर तक पूरी राजधानी तक जितने ऑफिसर्स हैं सब एंटी, कुछ न कुछ नुक्स निकालते रहे, कोई न कोई बात। और वो समय था, मैं समझता हूँ शायद जो पुराने होंगे, 83 में कोई थे यहाँ बैठे 83 वाले? नहीं है, कोई नहीं, सब बाद वाले हैं। आप भी नहीं थे विजय भाई, थी ना आप? 83 में ओम शांति भवन बना, और जब ओम शांति भवन की जमीन ले ली गई तो इतना पैसा नहीं था, इतना बड़ा हाल बनाएंगे, ये सब व्यवस्था होगी, कुछ भी ऐसा समझ में नहीं आता था कैसे होगा। लेकिन एक भाई ने जमीन लेके ऐसे ही दे दी, दादी ऐसे जंगल पड़ा है, पहाड़ियां हैं और बहुत लोग आने शुरू हो गए हैं, वृद्धि हो रही है, आप यहाँ पर एक हाल बनवा लो। एक भाई ने जमीन लेके दे दी। उसके बाद जब यहाँ पर पहाड़ी थे तो उनको जब तोड़ना शुरू किया तो नोटिस पर नोटिस, नहीं तोड़ सकते आप, वो की पहाड़ियों को तोड़ने की बिल्कुल मना है। बहुत सारी रुकावटें आई एक के बाद एक। और दादी जी के अंदर जो उमंग उत्साह था, बातें आती हैं उनकी परवाह नहीं करनी, हो जाएगा सब, बाबा बैठा है, बाबा का कार्य है, ऐसे समाधान स्वरूप स्थिति थी दादी की। कोई भी रुकावट आए उसको मोड़ देना, चलो ये बात कह रहे नहीं तोड़ना, नहीं तोड़ेंगे आप। अगर उस समय पहाड़ी तोड़ने की छुट्टी मिल जाती ना, जो आज इतना सुंदर ताज ऐसा ओम शांति भवन देखते हैं ना, उसके नीचे दो फ्लोर बन गए, बाबा का कमरा, लाइब्रेरी, उसके नीचे रहने का स्टोर बन गया, अगर तोड़ देते तो मैं समझता हूँ ये तो ग्राउंड हो जाता सीधा सीधा। हर बात में भला, हर बात में कल्याण, कभी नहीं कहा ऐसा क्यों हो रहा है, इसको ऐसा करना, इसको ऐसा, किसी प्रश्नों में नहीं गई। हमको समय पर देना है, बनाना है। आपको बताऊं 8 फरवरी की यहाँ पर डेट उद्घाटन की फिक्स कर दी, और यूनाइटेड नेशन के असिस्टेंट सेक्रेटरी जनरल ने हाँ कर दिया, मैं आऊंगा उद्घाटन। और यहाँ दिसंबर महीने में ओम शांति भवन की दीवार भी एक नहीं बनी थी और फरवरी की डेट अनाउंस थी। रुकावट पर रुकावट, न मिस्त्री मिले, न मजदूर मिले, और दादी जी को था कि हमको 8 फरवरी को उद्घाटन करना है। लेकिन प्रयोग करते थे, ऐसे नहीं ऐसे छोड़ देते थे, योग का प्रयोग, वर्णन चिंतन है, योग एक बहुत बड़ी शक्ति है, लेकिन इसका हम कभी प्रैक्टिकल प्रयोग नहीं करते। सुनते हैं बहुत सारी बातें, सुनते हैं कि ये हो सकता है। कोई भी विघ्न को टालने के लिए दादी जी ने योग का ही हथकंडा अपनाया, 2 बजे उठ करके योग करना है। और ऐसे ऐसे सहयोगी आते गए, 1-2 महीने में एक गैंग निकली सेवा की इधर गुजरात से, वो कहने लगी दादी आप क्यों चिंता करती, हम लेके आते अपने सारे ग्रुप को लेके आते, हम 15 दिन में सब दिवाले बना देंगे। और सचमुच वो पूरा ग्रुप आ गया और फटाफट दिवाले बना के खड़ा कर दिया, वही जो पत्थर ऊपर का तोड़ा था वही से लगा करके दिवाले बना दी। एक भाई और गुजरात से आया, कहता कैंची मुझे बनाना आता, मैं कैंची बनाता हूँ, खुद कैंची बनाई। बाबा ने इशारा कर दिया बच्चे कोई ज्यादा शो नहीं करना, कोई संगमरमर नहीं लगाना, बिल्कुल सिंपल बनाना, बाबा का भी डायरेक्शन मिलता रहता था। और उद्घाटन के दिन हाल बन के तैयार हो गया, दो दिन पहले टाइल्स लगी थी, ये जो रातों रात टाइल्स लगी ना, अभी तक मिजाइल वही चल रही है, कोई दूसरी बदली नहीं। बॉम्बे से एक जाल मिस्त्री थे, वो आ गए, उन्होंने देखा इतना बड़ा हाल बनाया, इसमें साउंड बड़ा अच्छा होना चाहिए, खुद ही आकर के अपने आप कहा ऐसे करो, ऐसी स्टेज बनाओ, ऐसे स्टेप्स दो, ये करो, पूरा नक्शा देके गए, कोई फीस नहीं लिया। ऐसे ऐसे बाबा के बच्चे आते गए, जैसे दादी कहती थी जैसे कोई मक्खन से बाल निकल जाता ना, मेहनत नहीं लगती। लेकिन वो एक बल, एक भरोसा, एक निश्चय, अटूट निश्चय कि कार्य किसका है। और भी कई बार ऐसी ऐसी बातें आई यज्ञ के आगे, मैं तो 46 साल 47 साल से मधुबन में हूँ, मैं देखता आया हूँ, बहुत सारी समस्याएं भिन्न भिन्न रूप से, नए नए रूप से आई। और बाबा तो सदा ही बेफिकर बेगम पुर का वासा, लौकिक में साकार में भी ब्रह्मा बाबा जब रहे, बहुत सारी परीक्षाओं का सामना किया, पहले समाज से इतना सारे विरोध हुए, इतनी समस्याएं आई, बाबा को यहाँ तक भी मार दो खत्म कर दो, उसमें भी बहुत सारे लोगों ने विघ्न डाले, लेकिन इतनी ऊंची स्थिति में बाबा रहे, किसी को दोषी नहीं ठहराया, इसके कारण ऐसा हो रहा नहीं बच, ये सब निर्दोष। बहुत ऊंची भावना। सुना होगा बाबा को एक बार किसी ने, जब विरोध होता है चिढ़ जाते हैं लोग, किसी के घर में कोई बहन कोई बहू यंग एज में ब्रह्मा कुमारी बन जाती है, पवित्र जीवन जीने लगती है, तो सारा घर विरोध में आ जाता है। तो कोई एकदम विरोधी बन करके कहने लगा चलो इसको साफ कर दो, उड़ा दो उनको, 5 सरदारों को भेज दिया पैसा दे करके मारने के लिए आए, और फुल तैयारी से आए थे। तो यहाँ तो पहरा रहता है, और उस समय बहनें ही पहरा देती थी, पहले पहले भाई तो इतने थे नहीं, तो बहनों ने जब उनको देखा तो डर गई पहले कि ये तो बड़े अलग प्रकार के लोग लगते हैं, मुझे दादा से मिलाओ, मुझे दादा कहाँ है, दादा से मिलना है। तो बोला ठहरो आप बैठो, मैं देखती हूँ दादा कहाँ है। तो उनको रोका, तब तक आई एक बहन दौड़ करके बाबा के पास, बाबा ऐसे ऐसे लोग आए हैं लेकिन उनकी भावनाएं गलत लगती है मुझे, ठीक नहीं लगते हैं, क्या करना है। बाबा कहता बच्ची भेज दो उनको, भेज दो। जानता था अगर इनको रोकेंगे तो और उपद्रव करेंगे। तो बाबा अपने गद्दी पर आसन लगा के योग में बैठ गया, जो होगा देखेंगे, निश्चिंत। ज्यों उन्होंने गेट से प्रवेश किया वहां पर गुरु नानक भी उनको दिखाई देने लगे, सारे के सारे पांव के नीचे लेट गए थे। बाबा कहता बच्चे उठो क्या हुआ, उठो उठो। अब उनको तो गुरुदेव जी दिखाई दे रहे थे। थोड़ी देर के बाद बाबा ने उनको होश में लाया, उठाया, बच्चे क्या हुआ। बाबा मेरे से बहुत बड़ी भूल हो गई, बहुत बड़ी भूल हो गई, मैं तो आपको मारने के लिए आया हूँ, ये देखो हथियार लेके, मुझे ऐसे ऐसे लोगों ने भेजा है पैसा दे करके, लेकिन आप तो साक्षात भगवान है, मैं आप पे पर हाथ कैसे चला सकता। बाबा बच्चे कोई बात नहीं, कोई दोष नहीं आपका, पता नहीं ना। बाबा ने प्यार से फल मंगाए, टोली मंगाई, उनको हाथ से दिया, दृष्टि दी, वापस चले गए। समस्याएं आई, ऐसे नहीं आई, ब्रह्मा बाबा के सामने बहुत सारी बातें आई, बहुत फेस किया। उस समय तो ये भाई लोग थे ही नहीं ना, बहनों की संस्था कुछ थोड़े बहुत थे, लेकिन बहनों के बीच में रह करके बाबा के ऊपर कितने कलंक आए, कितनी बातें आई, लेकिन एक बल, एक भरोसा, निश्चय की विजय, हिले नहीं, क्योंकि विजय की भावी निश्चित है, परीक्षाएं आएंगी, पास हो जाएंगे। आर्थिक रूप में कितनी परीक्षाएं आई, आज किसी के पास अगर 2-4 बच्चे हों और खाने के लिए न हो क्या होगा, और बाबा के पास तो 14 साल तक सभी ने खूब मुंह से पिस्ता बादाम खाया। गायन था कि वो मंडली में तो सब पिस्ता बादाम खाते हैं, क्योंकि बाबा की अपनी प्रॉपर्टी, फिर 3-4 परिवार और समर्पित हुए, वो भी सब बड़े बड़े जवाहरी लोग थे जो समर्पित हुए, तो बहुत आराम से 300-400 लोग जो संस्था में आए समर्पित हुए रहे वो 14 साल तक मौज किया। लेकिन जब भारत आने लगे तो आप सबको मालूम है, इतिहास सुना होगा कि बहुत सारा सामान था और उन्हों की सरकार ने वहां वालों ने कहा आप सब ले जाओ। अपना तो था ही, लेकिन कई लोग सिंधी लोग जब वहां से भागे थे संबंधी, तो कोई गाड़ी छोड़ के गया था, कोई अपने घर का सामान छोड़ के गया था, क्योंकि वो तो उस समय कुछ लाए नहीं 47 में। लेकिन जब 50 में बाबा आने लगे तो सबने कहा आप तो खुदा परस्त हैं, आप यहीं रहो, अगर जाना है तो सारा सामान लेके जाओ। तो इतना सारा सामान अब लाने के लिए इतना बड़ा शिप, और जिन्होंने यहां निमंत्रण दिया था बुलाया था उनको एक चांस मिल गया कि ये संस्था अभी देखें कैसे चलती है, वहां तो मौज से रहे। पैसा जो था, चल संपत्ति थी वो शिप में, और पूरी ट्रेन ओखा से आबू रोड तक किया, उससे ऊपर आए सामान लेकर के, इतना तो जितना पैसा था वो सब खत्म हो गया, कुछ नहीं बचा। और जो सामान था, अब 300-400 लोग खाने वाले यहां आ तो गए, और भरतपुर की कोठी वो लिया, ब्रज कोठी जिसको हम कहते हैं, यहीं पर है, वो शमशान के पास है। तो उस कोठी में आते ही शुरू हुई परीक्षाएं, और ऐसी ऐसी परीक्षाएं आई जो कभी सोचा ही नहीं था। एक तो मई में आए, जून से बरसातें शुरू हुई, और सबके पास, कोई के पास गर्म कपड़े नहीं, कोई साधन नहीं, सबके सब बीमार पड़ गए, ठंडी इतनी हुई, खाने के लिए कुछ नहीं, दवाई तो थी ही नहीं, डॉक्टर तो थे ही नहीं, और जो लाए थे वो भी सब इधर उधर दे दे करके बेच बेच करके खाने लगे। मशीनें थी सिलाई की, बहुत सारा सामान था, और बाबा बेफिक्र बादशाह निश्चिंत मौज में। बच्चे, बाबा कोई कारण से परीक्षा लेता है, इस परीक्षा के पीछे बहुत बड़ा राज है। बाबा को तो पता है, शिव बाबा तो जानता है कि अगर इन बच्चों को ऐसे ही प्यार प्रेम से रखेंगे तो ये सेवा पर तो निकलेंगे ही नहीं। तुम्हें साथ खाऊं, तुम्हें से बैठूं, तुम्हें संग सोऊं, तुम्हें साथ रहूंगा, जिएंगे मरेंगे तेरे दर पर रहेंगे, वायदा तो यही था। अब वो परीक्षा जब आई तो थोड़े जो यंग थे ना, थोड़ा जो कारोबार कर सकते थे, उन्होंने सोचा मैं कुछ कमा के ले आऊं, कुछ नौकरी करूं, कुछ बिजनेस करूं। बाबा ने कहा अरे बच्चे क्या सोच रहे हो, जिसको तुमने छोड़ दिया उसकी तरफ फिर क्यों मुंह कर रहे हो, तुमको तो बाबा ने इतना ज्ञान धन दिया है, गुणों का धन दिया है, इतनी सब चीजें, जिनको दान करो। तो थोड़ा जो कच्चे पक्के थे वो तो लौकिक परिवारों के बीच में गए, और बाबा कहता था बच्चे देखना अजगर बड़ा मुंह खोल के बैठा है, यहां से जाओगे खा जाएगा। गए तो सचमुच वो गृहस्थी बन गए जाकर के। लेकिन जो पक्के थे, जो बाबा कहे, जो खिलाए, कैसे रखे, जिस हालत में रखे, वो तो पास हुए। और पास होकर के बाबा ने कहा बच्ची तुम्हारे पास ये धन है ना, ज्ञान धन, बांटो जाकर के। उठाया चित्र, उनको पता नहीं कहाँ जाना है, जाओ बच्चे कुंभ मेले पर बहुत भक्त आते हैं, वहां चित्र लेके जाओ, वो आपका ज्ञान सुनेंगे। सेवाएं शुरू हुई, और ऐसी ऐसी सेवाएं शुरू हुई जो सोच भी नहीं सकती थी बहने। बैठती थी तो उनके दृष्टि से, उनकी पहरवाई से, उनके आभा मंडल से लोगों को बड़े अच्छे अच्छे विचित्र अनुभव होते थे। वो कहते थे आप देवियां कहां से आई हो, और आप यहां क्यों बैठी हो पानी किनारे ऐसे। तो उनकी जो पवित्रता थी, योग का बल था, तपस्या थी, उससे लोगों को बड़े अच्छे अनुभव होते थे। उन्होंने फटाफट मकान देना शुरू कर दिया, दिल्ली में केंद्र खुले, फिर पंजाब में खुले, लखनऊ कानपुर में खुले, धीरे धीरे सेंटर खुलने लगे, निमंत्रण मिलने लगे, जापान का निमंत्रण मिल गया। एक सन्यासी ने देखा कि तो बड़ा ऊंचा ज्ञान इनके पास है, बोला बहने आप चलोगी जापान में, हमारा धर्म सम्मेलन हो रहा है। बाबा से पूछा हाँ हाँ बच्ची ये तो विदेश में भी संस्था जाएगी। 52 की बात है, एक तरफ बेगरी पार्ट है, कुछ नहीं है घर में, और एक तरफ विदेश जाने का निमंत्रण मिल रहा है। कैसे वीजा बनेगा, कैसे टिकट आएगा, कौन देगा, कोई न कोई को बाबा टच करता था और साधन बन जाते थे। इतना सरल रीति से सेवाएं प्रारंभ हुई और प्रारंभ होते भी कितने विघ्न आए, कितनी समस्याएं आई। थोड़ा सा इतिहास पढ़ लो, जीवन कहानी बाबा की या संस्था की, बहुत सारी रुकावटें, बहुत सारे विघ्न, लेकिन बाबा तो समाधान स्वरूप, अचल अडोल एक रस। और बाबा को फॉलो करने वाली बहनें भी इतनी शक्तिशाली, मम्मा तो शेरनी थी, कहीं पर भी कोई होता था बाबा और किसी को नहीं कहता था बच्ची तुम जाओ। सुना है हापुड़ के हंगामे की बात, समस्याएं देखो कितनी बड़ी समस्याएं, एक तरफ पूरा समाज पूरा शहर बहनों को निकाल के फेंक दो यहां से नहीं रह सकते, और ऐसा ऐसा उपद्रव किया जो क्या बताऊं। मैं जगदीश भाई जी बहुत प्यार से कभी कभी वो कहानी सुनाते थे, उस समय ज्ञान में आ गए थे, भाई लोग गए तो उनको तो माथा मोड़ करके गधे पर बिठा दिया, बहुत तंग किया, भाइयों को तो सुनते ही नहीं थे, अब बहनों के साथ क्या करेंगे। लेकिन बहनों के सामान को निकाल के फेंक दो, बस ट्रक लेकर के आए, एक दिन बड़ा हंगामा किया करके गाली गलौज किया, तो बाबा ने मम्मा को भेज दिया, जाओ बच्ची सामना करो। मम्मा गई तो उनको पता चल गया इनकी मातेश्वरी आई है, इनकी हेड आई है, अब इन्हीं को पहले पकड़ के निकालो, बाद में सब देखेंगे। तो मम्मा अपनी दूसरी मंजिल पे जाके तपस्या में योग में बैठ गई, नीचे लोग हंगामा कर रहे थे, बहुत गालियां दे रहे थे, तो बहनों ने दरवाजा बंद किया था, तो उन्होंने जोश में आकर के मारी लात और दरवाजा तोड़ दिया। बहुत सारे लोग खड़े थे, ट्रक लेके आए थे सामान निकाल के अभी भेज दो यहां से। तो जब घुस गए 5-7 लोग तो ढूंढने लगे मम्मा कहां इनकी, बहने बताए नहीं, पता नहीं मम्मा के साथ क्या करेंगे। और मम्मा तो ऊपर मस्त योग में बैठ गई जाकर के, ये लोग भाग भाग के ढूंढ ढूंढ करके इधर से उधर पहुंचे, और मम्मा की ऐसी दृष्टि से, मम्मा कुर्सी पर बैठी थी, मम्मा कहती आओ बच्चे बैठो आओ बैठो। अब मम्मा को देखा और मम्मा कुछ नहीं बोली, बस आओ बच्चे बैठो इतना ही कहा और दृष्टि देने लगी। सब चुपचाप ऐसे बैठे रहे, उठे नहीं, सारा आवाज बंद हो गया। नीचे जो गालियां दे रहे थे हंगामा कर रहे थे वो कहते शायद उनको जादू लगा दिया ब्रह्मा कुमार, कुछ तो हुआ है, ये तो कोई आवाज ही नहीं आ रही, क्या हो गया। अब वो तो चुंबक, मम्मा का अपना पवित्रता का बल, योग का बल, योग में बैठ के दृष्टि दे रही और चुप साफ शांति से बैठे हैं दृष्टि ले रहे हैं। थोड़ी देर के बाद चुपचाप उठे, देखा कि बहुत देर हो गई है, लोग बहुत हंगामा कर रहे हैं, चुपचाप आए नीचे और आके कहते हैं भाई ये ब्रह्मा कुमारियां कैसे भी हूं मैं नहीं जानता, इनकी मम्मा तो साक्षात देवी है। कहता देखा जादू लग गया तुमको, क्या सुरमा पहनाया तुमको, क्या किया। बोला नहीं सुरमा और मां नहीं, आप जाओ शांति की देवी है वो, उसके सामने जाते ही शांति का अनुभव होता है, हम तो कुछ बोल ही नहीं सके, हमारा तो मुख ही बंद हो गया। तो ये है योग का बल, ये है तपस्या का बल, और ऐसी ऐसी परीक्षाओं को बाबा ने ऐसे सरल रीति से पार कराया, समाधान स्वरूप स्थिति, क्यों क्या नहीं करो, ऐसा हुआ वैसा होगा, ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा। कई तो खुद भी हलचल में आते हैं और दूसरों को भी सुना सुना करके ऐसा हुआ ऐसा हुआ दूर कर देते, बाबा से दूर कर देते, यज्ञ से दूर कर देते, संस्था ऐसे है देखो ऐसा हो गया ऐसे हो, तुमको पता नहीं चला और ऐसे बताएंगे मिर्च मसाला लगा करके। लेकिन बाबा ने तो अपने बच्चों को इतना शक्ति संपन्न बना दिया, इतना निश्चय बुद्धि बना दिया कि कोई भी प्रकार का पेपर आ जाए, धन का आया, शरीर का आया, कई बीमारियां आई, लोगों से आए, सब पेपर्स को इतना सहज रीते से। अभी आप सब क्या करेंगे, पेपर तो आते हैं ना, ऐसा शक्ति संपन्न बनो, योग की शक्ति, योग का कवच पहन लो, कुछ कोई नहीं कर सकता, लेकिन ज्ञान योग का कवच चाहिए, बहुत अच्छा मनन चिंतन चाहिए। और सबसे अच्छी एक ऊंची स्टेज है मस्तक के बीच में मैं आत्मा, इस शरीर से डिटैच होके यहां चमकती हूं, इसका अभ्यास करो, क्योंकि जितनी प्रॉब्लम्स आ रही हैं वो सब देह अभिमान के कारण आ रही, हमारे कमजोर संकल्प ही कई परिस्थितियों का, कई समस्याओं का आह्वान कर लेते हैं। अगर कमजोर संकल्प ही नहीं हम चला रहे हैं, बातें आएंगी ऐसे लगे तो आइए खत्म हो जाए, परवाह नहीं करनी, सोचना नहीं। बाबा कहते थे बच्चे जैसे कोई ग्रहचारी आती है तो अंगूठी पहनते थे ना पहले, आपको भी मैं अंगूठी देता हूं। कौन सी अंगूठी है, कौन सी अंगूठी पहनी है, एक नग वाली है, नौ नग वाली है? एक नग की है तो अव्यभिचारी याद, अव्यभिचारी एक बाबा, दूसरा न कोई। जिसको बाबा कहता एक वृत्ता, एक वृत्ता, वृत्ति में कोई देहदारी नहीं आता है। अगर पहले संकल्प में आपने बाबा शब्द कहा, और बाबा अभी और ऐड करता है, सिर्फ बाबा नहीं कहो, मेरा बाबा अधिकार से कहो, हर परीक्षा में पास करने के लिए, हर समस्या का समाधान देने के लिए आ जाएगा। लेकिन दिल से कहो, अंगूठी पहनी हुई हो कि मैं एक को ही याद करूंगी, एक के सिवाय और दूसरे को नहीं। कई लोग सोचते हैं बाबा तो निराकार है ना, वो तो ऊपर रहता है, साकार में तो कोई चाहिए। कोई बीमारी आई, कोई बात आई, कोई पुलिस वाले को याद करेंगे, कोई डॉक्टर को याद करेंगे, कोई वकील को याद करेंगे। परीक्षाएं आती हैं, सेवा केंद्रों पर भी आती हैं, आपके लौकिक में भी आती हैं, आप जिस बिजनेस में वहां भी आती हैं। लेकिन अगर पहले नंबर में बाबा याद आ जाए, इसका समाधान मैं दूसरों से लेने की बजाय मैं बाबा से लूंगा, बाबा आपको कहीं ना कहीं से टच करेगा और उसको भेजेगा, सामने से भेजेगा, साकार में भेजेगा, लेकिन आप पहले उसको याद नहीं करो। ये बहुत अच्छी विधि है, हम बाबा को याद करें और बाबा हमारी चिंता करे कि बच्चे को जिसकी मदद चाहिए। अगर ऐसी बुद्धि की लाइन क्लीन है, क्लियर है, तो आने वाली परीक्षाओं को भी हम सहज समझ सकते हैं। कहते हैं श्री गणेश विघ्न विनाशक है, विद्यापति है और विघ्न विनाशक है। कितनी अच्छी मूर्ति बनाई है, यादगार बहुत सुंदर बनाया है, शरीर मेल का दे दिया और सिर हाथी का लगा दिया, यादगार है, बहुत सुंदर यादगार। बाबा इसका बहुत अच्छे ढंग से वर्णन करते हैं, बच्चे श्री गणेश शिव परमात्मा का पहला बच्चा, बुद्धिमान है, विजडम है उसके पास, लंबी सूढ़ है जो दिखाई है, ये है परखने की शक्ति, दूर से ही परख लेता है क्या होने वाला है। अगर आप विजडम है, ज्ञान है, अच्छी तरह से नॉलेज है, तो नॉलेज फुल आत्माएं धोखा नहीं खाती। मान लो आज आपको पता है ये बादल उठ रहे हैं, अंधड़ आने वाली है, तो आप निकलने के पहले कुछ अपने साधन लेंगे साथ, अगर जाना ही जरूरी है, नहीं तो नहीं जाएंगे। भाई जानते हैं माहौल बिगड़ा हुआ है प्रकृति का, और जाएंगे तो कुछ नुकसान होगा, इसलिए शांति से या तो बैठेंगे, अगर जाना ही है तो कोई साधन लेके निकलेंगे। ऐसे ही कलियुग के अंदर अगर आपको ये टच हो जाए, नॉलेज है कि इस स्थान पर हम जा रहे हैं, तो कुछ न कुछ ऐसे लोग हैं, ऐसा वातावरण है, वहां पर हमें अपना सुरक्षा कवच खुद पहन करके जाना है, तब तो रक्षा होगी। अगर उस समय हम सुरक्षा कवच अपने घर में ही छोड़ के आ गए और चले गए, तो जरूर कहीं न कहीं वार हो जाएगा। क्या है सुरक्षा कवच, है सबके पास, है माताओं के पास, कौन सा है जी? सुरक्षा कवच है हमारे शुद्ध श्रेष्ठ संकल्पों के लाइट का कवच। पहला, बाबा की याद तो बाद में आएगी, आप बहुत पॉजिटिव रूप से, बहुत हल्के संकल्प, लाइट संकल्प, मैं किसकी संतान हूं और कौन मेरे साथ है, कंबाइंड स्वरूप बाबा को साथ ले लो। आप विधि एक अपनाना, सब भाई लोग खास, बाहर जाते हो ना, बिजनेस में जाते हो, कभी स्कूटर लेके, कभी फोर व्हीलर लेके, कभी कोई साधन से, घर से निकलने के पहले क्या एक मिनट के लिए बाबा के आगे खड़े होकर के, फोटो सबने बाबा का रखा है, कमरे भी कईयों ने बनाए होंगे, बनाए ना घरों में छोटे छोटे, पहले पूजा की कोठरी बनाते थे और अभी बाबा का छोटा रूम बना लेते हैं। घर से निकलने के पहले मैं आपको दिल्ली की बात सुनाता हूँ। मैं कुछ समय पहले आपके बहादुरगढ़ की तरफ गया था, एक भाई है। वो जब घर से निकलते तो निकलने लगे तो बीच में खड़े हो गए सीढ़ी पर, कहते एक मिनट भाई साहब, मैं भी साथ में था। और सीढ़ी के नीचे बीच में जो जगह थी ना स्पेस मकान में, वहां पर बाबा का छोटा सा कमरा बनाया था। वहां रुके, अपना बाहर जूता निकाला, एक मिनट घुसे झुक करके और बाबा के आगे कहे, बाबा इस बिजनेस के लिए, इस काम के लिए चल रहे हैं, आप चलो हमारे साथ, आप आगे आगे चलो, ये काम हो जाए। बहुत बुद्धि से, प्यार से, दिल से कमरे में रोज जाने। कहते हम जब सीढ़ी से ऊपर भूल जाते हैं कभी कभी बाबा के सामने खड़ा होना, लेकिन बीच में है तो आते हैं तो दिखाई देता, फट से उतारते जूता, फट से जाके बाबा से मिलते हैं और बाबा को साथ लेके जाते हैं, हमेशा सफलता मिलती है, कोई भी विघ्न आता ही नहीं है, नुकसान होता ही नहीं है। अब ये कितनी अच्छी विधि है, अगर इस विधि को अपना लो, बाबा सर्वशक्तिवान सर्वसमर्थ मेरे साथ साथ चल रहा है, वो मेरा गाइड है। और बाबा को ऐसे बुद्धि बल से, बाबा को ज्यादा तो जगह चाहिए नहीं, टिकट भी लेने की जरूरत नहीं है, टिकट तो नहीं चाहिए ना उसको कोई जाने के लिए, साथी के लिए। बाबा कहता है तुमको अपने बुद्धि के आसन पर साथ में मेरे को भ्रकुटी में बिठा लो, मैं साथ साथ चलूंगा। लेकिन इतना प्यार, इतनी सच्चाई, इतनी स्वच्छता, बाबा को ऐसे तो नहीं बिठा सकते ना। अब किसी के लिए नफरत है, किसी के लिए घृणा है, कोई बुरे विचार अंदर चल रहे हैं और बाबा कहें तुम मेरे साथ चलो, तो जाएगा बाबा? बहुत हल्की फुल्की ड्रेस पहन करके, बहुत निश्चिंत स्थिति से शुद्ध संकल्प लेकर के जाओ, कार्य में सफलता आपका जन्म सिद्ध अधिकार है, जो करोगे उसमें सफलता समाई हुई है। बाबा तो कई बार कहते हैं आपके कदम कदम में सफलता है, असफलता आपके आगे हो ही नहीं सकती, असंभव है। तब जब बाबा इतनी गारंटी लेता है तो ये कोई भी बात के लिए पीछे नहीं हटो, कोई ऐसे साधारण संकल्प नहीं करो, बाबा को साथी बना के सर्वशक्तिमान को साथ लेके चलो। अब विचारी याद की अंगूठी है और दूसरी नौ रत्नों की अंगूठी भी है, अष्ट शक्तियां हैं हमारे साथ। और वो अंगूठी अगर पहनी हुई, जो शक्ति की जिस समय जरूरत है, कहीं पर जरूरत पड़ती है सहन करने की, कहीं समाने की जरूरत पड़ती है, कहीं सामना करने की जरूरत पड़ती है, कोई न कोई शक्ति हर समय काम में आए, जो जिसकी जरूरत है वही काम में आए और समय पर आए, बाद में आई तो क्या फायदा। अब मान लो कोई ऐसी टकराव की स्थिति बन रही है, बाबा कहता है बच्चे मुंह में मुहिलरा डाल लो, सुना है ना साकार बाबा के शब्द, मुंह में मुहिलरा डाल लो, क्या होगा? टकराव तो नहीं होगा, कम से कम तू-तू मैं-मैं तो नहीं होगी। अगर वो गुस्से में बोल रहा है, आप एक सेकंड में शांत हो गए, बोलना बंद कर दिया, कब तक बोलेगा? चला जाएगा अपने आप, बोल लेने दो जितना बोलता है, शांत हो जाएगा, फिर ठंडा होकर के आपके पास आएगा कि मैंने आपको बहुत उल्टा सीधा बोला। सचमुच बाबा ने ये सब विधियां प्रैक्टिकल करवाई, जहां सेवाओं पर भेजा बहनों को इतना पक्का कर दिया, क्योंकि नई नई सेवाएं थी ना शुरू शुरू में, लोग तो कहते थे ये सनातन धर्म के विपरीत लोग हैं, उल्टा ज्ञान देते हैं, क्रिश्चियंस कहां से आ गए, ये क्या ड्रेस पहन करके आए, ये तो कभी सिर पर बाल साड़ी भी नहीं रखती, पल्लो भी नहीं रखती, कैसी है बहने, ऐसे ऐसे बोल करके क्या क्या लोग अपमानित करते थे बहनों, किस तरह से बोलते थे। हम लोग जब आए तभी भी ऐसा ही वातावरण था, हमारे मेले होते थे, प्रदर्शनी लगाते थी बहने, और सामने ही माइक लगा करके बड़े बड़े सन्यासी लोग गालियां देना शुरू करते, इनके यहाँ कोई नहीं जाना, ये ऐसा कर देंगे, ये हमारे सनातन धर्म की नहीं है। और बाबा के पास समाचार आता था, बाबा मुस्कराता था, बच्ची इनको पता नहीं है ना, अब ये तुमको गालियां दे रहे हैं, कल ये आपके ऊपर गिन गिन के फूल चढ़ाएंगे। अभी वही समय आ गया कि नहीं आया? आ गया ना, अभी गाली देता है कोई? अरे आप ही धर्म की रक्षा कर सकते हो, आप ही सनातन धर्म के रखवाले हो, स्टेज देते हैं, सम्मान देते हैं, बुलाते हैं, थोड़ी तो मेहनत लगी, लेकिन अब प्रैक्टिकल दिखाई देता है कि जिन्होंने बहुत अपमान किया। एक सन्यासी थे, सिंध से ही आए थे, हरिद्वार में रहते थे, बहुत विरोध करते, बहुत विरोधी, तुमको तो देख के आए थे वहां का नाटक, बहुत सारे घरों में हंगामा हुआ था ना, तो हैदराबाद के थे वो, तो यहाँ पर मंडलेश्वर बने तो हरिद्वार में रहते थे, पूरी गालियां देते थे। अब बहने हमारी वहां प्रेम बहन थी देहरादून में, बहुत प्यार से महात्मा जी दादी ने ये भेजा, कभी राखी ले जाती कभी टोली ले जाती, उनको स्नेह देती रही। फिर एक दिन कहा आपको दादी बुलाती है, एक बार आओ हमारा आश्रम देखने चलो। पहले तो नानू करते रहे, फिर अचानक कह दिया चलो एक बार चलते हैं देख के आते हैं, और यहाँ आ गए। यहाँ आए तो ये विज्ञान भवन उस समय बना था, उसी में उसको रख दिया कमरे में। रात को 1 बजे वो अपनी सिद्धियां, तो उनके पास कुछ होती हैं, कुछ जानते भी हैं, कैच भी करते हैं, तो 1 बजे उठे और कहने लगे, पहरे पर आए बाहर निकले कि मैं आपके मुख्यालय में यहाँ पांडव भवन में जाना चाहता हूँ। तो सबने कहा अभी महात्मा जी 1 ही बजे है, 3-3.30 बजे सब उठते हैं, वहां मेडिटेशन चलता है फिर जाना, नहीं मुझे अभी जाना है। तो भले खुला तो घर है, कोई इतना ताला चाबी है ही नहीं कहीं, बोला भले जाइए। कहते आप लोग नहीं जाना, मैं अकेले जाऊंगा। वो आ गए यहाँ पर, पांडव भवन का गेट खोल दिया लोगों ने, समझा योग करना होगा, मेडिटेशन तो चलता रहता बाबा कमरे में। लेकिन उनकी अलग भावना थी, वो जहां जहां थी वो पहले वाले के साथ पूछने लगे कि यहाँ पर कहाँ पर दादी सोती हैं, कहाँ पर बहने सोती हैं, कहाँ पर भाई सोते हैं। वो एक एक कमरे के चारों तरफ के वाइब्रेशन नोट करने लगे, पूरे पांडव भवन में घूमे, और घूम करके फिर जाके 1-1.5 घंटे के बाद जाके अपने कमरे में सो गए। फिर सुबह बहने जब मुरली चलने लगी तो उठाए महात्मा जी चलो क्लास में, दादी बुला रही है आपको, याद कर रहे हैं। तो मुरली के बाद महात्मा जी आए सभा के बीच में, और आते ही दादी को क्या माफी मांगने लगे, मुझसे बहुत भूल हुई है, मुझे माफ कर दो दादी, मुझे माफ कर। दादी के क्या हुआ महात्मा जी, ऐसा क्या हुआ? कहता है वो भाई सन्यासी कि आज तक मैंने बहुत कुछ उल्टा सीधा आप लोगों के लिए बोला, बहुत कुछ कहा, बाबा के लिए तो मैंने कितना बोला, लेकिन आज मुझे पता चला ये संस्था जो है इसके अंदर पवित्रता का बल है, और उस पवित्रता के बल से इतनी बड़ी आगे बढ़ी है, इसलिए मैंने आज रात को सब कमरों के आगे वाइब्रेशन कैच करने के लिए घूमा हूँ, और मुझे पता चला आज से मैं आपका भाई हूँ और मेरे 2 लाख शिष्य आपकी सेवा में हाजिर हैं। दादी कहती ठीक है ले और राखी अभी बांधती हूँ, और दादी ने उसको प्यार से राखी बांधी और सचमुच पूरा सहयोगी बना। फिर उसके बाद कॉन्फ्रेंस हुई सन्यासियों की, कई उनको भेजा, बहुत सहयोगी बन गया। तो ऐसे कई बातें हैं जो अनुमान के कारण लोग नहीं समझ पाते हैं कि बहन भाई साथ रहते हैं, इतने परिवार वाले साथ रहते हैं, इनकी धारणाएं क्या होंगी, पता नहीं इनकी कथनी क्या है, करनी क्या है। अनुमान तो लगाते हैं ना लोग, असंभव समझते हैं वो बात कि हम नहीं रह सकते, लोग नहीं रह सकते, और ये लोग इतनी बड़ी चैलेंज कर रहे हैं। तो बाबा ने तो कभी सिद्ध नहीं किया, कहते सत्यता को कभी सिद्ध नहीं किया जाता, सत्यता एक अपने आप में सूर्य है, वो तो अपने आप सिद्ध हो जाती, नहीं तो सिद्ध करोगे तो जिद करना पड़ेगा, कहीं ना कहीं तो प्रसिद्ध करने के लिए कुछ न कुछ जोश लगाना पड़े। बाबा ने कभी भी सिद्ध नहीं किया कोई बात, अपनी प्रैक्टिकल जीवन खुद बनाई और बच्चों की वो जीवन ढाली ऐसी बनाई, और उसके कारण कई समस्याएं ऐसे पार होती गई हैं। आज जो इतना सहयोग, इतना स्नेह, इतनी वृद्धि हम सब देख रहे हैं, वो बाबा का उस समय का त्याग, उस समय की तपस्या, उस समय का बाबा का सत्यता और नम्रता का बैलेंस आज संस्था को कहां से कहां पहुंचा दिया। अगर जरा भी कुछ किटपिट करते, कहीं कुछ बोलते तो कितने विरोध हो जाते, कितनी बातें हो जाती, लेकिन नहीं, बच्चे सब निर्दोष हैं, इनका कोई दोष नहीं है, और ये अभी निंदा करते हैं तो इनको मित्र समझो, निंदा हमारी जो करे मित्र हमारा, इनका कोई दोष नहीं है, ये साथ रहेंगे तो और अटेंशन जाएगा, कोई बात नहीं। तो कोई भी बात आए समाज में, परिवार में, कहीं से भी अपनी फाउंडेशन को हिलाना नहीं, निश्चय का फाउंडेशन, अनुभव का फाउंडेशन, अनुभव एक बहुत बड़ी शक्ति है, ज्ञान का फाउंडेशन, नॉलेज इज माइट, नॉलेज बहुत बड़ी पावर है। इतना बड़ा ज्ञान बाबा ने हम सबको दिया है, स्पष्ट ज्ञान दिया है, ड्रामा कल्याणकारी है, ये बना बनाया है, इसमें कोई भी नई सीन नहीं है, तुम कल्प कल्प विजयी बने हो, विजय तुम्हारा जन्म से अधिकार है। ऐसे बाबा के इन महावाक्यों को, इस ज्ञान को अच्छी तरह से चिंतन करो, बातें आएंगी बेपरवाह बासा, चिंतन नहीं करना, सोचना नहीं। हम आत्माओं को बाबा कहते हैं, तुम मेरे बच्चे समाधान स्वरूप हो, अपनी समस्याओं का भी समाधान करो, और आपके सामने कोई भी आ जाए, कैसी भी समस्या लेकर के आ जाए, उसकी समस्याएं समाधान हो जाए। बाबा के सामने कई आते हैं ना, बहुत सारे क्वेश्चन लेके आते हैं, ये पूछेंगे ये पूछेंगे ये पूछेंगे। दादी के सामने भी ऐसे करते हैं, मेरे सामने भी, मैं अपने आप को भी देखा है, बहुत सारे प्रश्न लेके आते हैं, मुरली से ये प्रश्न निकालेंगे वो निकालेंगे टेढ़े मेढ़े, और वो लाइट स्थिति में जब बैठ के उनसे बात करूं, कहती सारे प्रश्नों का समाधान मिल गया, क्या पूछूं मैं तो बहुत सारे प्रश्न लेके आई थी। बाबा के सामने जाते सब प्रश्न भूल जाते, ऐसी स्थिति बनाने की जरूरत है। और समय अनुसार आप सब आए हैं योग भट्टी में, योग का किला मजबूत करो, योग एक किला है। राजाएं कभी कोठरी में नहीं रहते थे, किला में रहते थे, क्यों? किले में खुद भी सुरक्षित और उनकी प्रजा भी सारी किले के अंदर आ जाती थी। बड़े बड़े किले होते, छोटे मोटे नहीं होते, कई मील में बने होते थे, जहां शत्रुओं का ज्यादा अटैक होता था। राजस्थान में आप देखेंगे जब मुगल लोग आए तो राजाओं ने बड़े बड़े किले बनाए, बहुत बड़े बड़े किले हैं राजस्थान में, अभी तो टूट फूट गए फिर भी हैं। एक कुंभलगढ़ है यहाँ पर, बहुत बड़ा किला है, चित्तौड़गढ़ का तो बहुत टूट गया, यहाँ पद्मनी का दिखाते हैं। ऐसे जहां भी आप जाएंगे और देखेंगे बहुत बड़े बड़े किले हैं, और किले में जो रहते हैं कितने भी दुश्मन वार करें, बड़े बड़े गोले दागें, कुछ नहीं होता, सब सुरक्षित रहते। तो बाबा भी कहता है माया भले कितने बड़े बड़े गोले दाग दे आपके आगे, है आपके पास किला, किले में रहते हो, किले का बहुत अच्छा फाउंडेशन और बहुत ऊंची बाउंड्री होती है। अब शुद्ध संकल्पों से बहुत सुंदर बाउंड्री बनाओ, श्रेष्ठ संकल्पों की, और बाबा के याद की उसमें करंट डालो। देखा है जब सुरक्षा के लिए कहीं पर भी बाउंड्री बनाते हैं, हमारे पाकिस्तान हिंदुस्तान के बीच में बाउंड्री बनी है, तो एक बार मैं वहां राखी बांधने के लिए गया था, इधर बहुत नजदीक में एक बॉर्डर है, कहते भाई साहब बॉर्डर से 10 फीट दूर रहना। मैं क्यों, बॉर्डर तो लोहे का ही है ना, बोला नहीं नहीं ये लोहे का तो है लेकिन बीच बीच में कोई इसको क्रॉस करके इसको कट करके अंदर न घुस जाए, इसलिए इस पर करंट छोड़ी जाती है, और करंट ऐसी नहीं होती जो आपको खींचेगी, वो आपको फेंक देगी दूर। बहुत बड़ी बाउंड्री बनाई है बॉर्डर पर। हमने कहा बाबा भी कहता है बच्चे तुम अपने चारों ओर ये बाउंड्री बना लो, माया तो बड़ा दुश्मन है, कहीं से भी घुस जाती है, कभी संकल्प में घुस जाएगी, कभी बोल में, कभी संस्कारों में, और फिर बहुत परेशान करेगी, अंदर अंदर अटैक करती रहेगी, बम गोले दागती रहेगी, नींद पिटा देगी, खुशी गायब हो जाएगी, आपस में संबंध बिगड़ जाएंगे, क्लास अच्छा नहीं लगेगा, मुरली अच्छी नहीं लगेगी, एकदम अंदर अंदर तूफान मचा देगी। इसके लिए हर एक ध्यान रखना, योग एक बहुत बड़ी करंट है। जब शुद्ध संकल्पों की दीवार बना लेते हैं कि हम इस घेरे से बाहर नहीं निकलेंगे, एक भी साधारण नेगेटिव व्यर्थ संकल्प नहीं आने देंगे, प्रतिज्ञा करके जाओ कुछ भी हो जाए मैं अपने विचारों को अशुद्ध नहीं करूंगी, ये गंदगी है, कोई कैसी बातें मुझे सुना के चला जाए, किसी के प्रति मैं अपना दृष्टिकोण नहीं बदलूंगी। जब बाबा बैठा है सबको सुधारने की जवाबदारी उसने ली है, तो मैं अपने संकल्प क्यों दूषित करूं, अपने शुद्ध संकल्पों में रमण करूं, अच्छे अच्छे संकल्पों का घेरा बनाओ और उस घेरे के अंदर रहो। वही लाइट का कवच है, वो लाइट का आभा मंडल है, और जो उस लाइट के आभा मंडल में रह करके बीच बीच में बाबा को भी साथी बना लेते हो, करंट आ जाते, फिर माया कुछ नहीं कर सकती। और ध्यान रखना, अपने आप को जितना हो सकता है ज्ञान और योग में बिजी करो, फ्री नहीं रहो। जब फ्री है तो माया को आने का चांस मिलता है। अगर आप बहुत बिजी रहते हैं, वो अच्छा चिंतन करते हैं, अच्छे लेख लिखते हैं, मन को खूब होमवर्क देते हैं, तो मैंने देखा है कि कैसी भी संस्कार वाली आत्माएं हैं संस्कार, ऐसा नहीं कोई छूट गए हैं सबके, तो चलते आए हैं, बाबा के बनने के बाद भी कभी कभी उछल जाते हैं। लेकिन अगर किसी आत्मा ने अपने पर फुल अटेंशन रखा है, ज्ञान और योग में खूब बिजी किया है, सेवाओं में बिजी कर दिया, तो बातें आती हैं, खत्म हो जाती हैं, परवाह नहीं करते, पार हो जाते हैं। तो हम सब एक ऊंची स्थिति में रहे, जैसे ऊंचे पर जाते हैं ना, तो नीचे की जितनी बातें क्या होता है, वो छोटी 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 चींटी जैसी दिखाई देती है। और महात्मा के हाथ अगर पांव के नीचे चींटी आ जाए तो क्या होगा, खत्म हो जाएंगे ना, और अगर कान में चली जाए तो। ध्यान रखना, बाबा ने हम सबको कहा है, तुम मेरे सब महावीर महारथी बच्चे हो। ये चींटियां बहुत घूम रही हैं चारों तरफ से, कान में चली जाती हैं, ऐसा वो करता है, उसने ऐसा किया, यहाँ ऐसा होता है, वहां ऐसा होता है। व्यर्थ बातों की चींटियां कान में नहीं जानी चाहिए। किसी के अवगुणों की चर्चा कर कोई करे, आप सुनते भी नहीं, सुनो मुझे, इसलिए मैं यहाँ नहीं आया, मैं इसलिए बाबा का नहीं बना। हमेशा विशेषताओं को देखेंगे तो सब विशेषताएं अपने अमर भर जाएंगी, और कमियों को कोई देखने लगता है तो सारी कमियों की खान उसके पास होती है, बैठ जाओ तो सारा खजाना निकाल देता है कमियों। तो ध्यान रखना, जो कमी कमजोरी अवगुणों का चिंतन वर्णन करें, उस संग से परहेज करो, वही समस्याएं क्रिएट करती, वायुमंडल को भारी बना देती, और फिर लगता है तो बहुत बड़ा पहाड़ है, कैसे पार होंगे। बाबा कहता बच्चे, पहाड़ है तो कोई बात नहीं, पहाड़ को पहाड़ की जगह रहने दो, उसको तोड़ने लगो, तुम अपना रास्ता ले लो। अगर मंजिल पर पहुंचना है और आपके सामने, गाड़ी के सामने कोई पहाड़ी गिर जाए, झाड़ गिर जाए, तो आप क्या उतर करके उसको तोड़ना शुरू कर देंगे? आपको तो टाइम पर पहुंचना है, लक्ष्य है, कहीं से रास्ता मिल जाए वहां से क्रॉस कर जाएंगे, अपने रास्ते को देखेंगे किधर से जाऊं। तो बाबा भी कहता है, अगर कोई ऐसी बातें आ भी जाए संगठन के बीच में जो आपको लगे, तो बहुत बड़ी बात है, तो अपना रास्ता मोड़ लो, अपने चिंतन को मोड़ लो, बहुत इजी नेचर बनो। इजी वाले सहज मोड़ सकते हैं, जो टाइट नेचर वाले होते हैं ना, मुड़ते नहीं जल्दी। तो नेचर को इजी बना लो, कोई भी बातें आती हैं पार हो जाएंगी, समस्याएं समाप्त हो जाएंगी। कभी भी इनका वर्णन चिंतन नहीं करना, बाबा देख रहा है, बाबा साथ है, उसके साथ को लो, विजय मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है। जो सवेरा आने वाला है ना, उसको कोई रोक नहीं सकता, सत्ययुग को तो आना ही है ना निश्चय, नहीं आना है, फिर कितनी बातें आ जाए, संस्कारों की, स्वभावों की, टकराव की, जहाँ तू मैं मेरा तेरा आता है, वहाँ टकराव पैदा होता है। बोले मेरा बाबा, मैं बाबा का, बस और कुछ नहीं चाहिए, बेहद में आ जाओ, हदों में नहीं लटकना, तो समस्या मुक्त समाधान स्वरूप बन जाएंगे। तो हम सबको बाबा यही प्रेरणा दे रहा है, बच्चे कलयुग में समस्याएं तो बहुत तीव्र गति से अति की ओर जाएंगी, बढ़ेंगी, आप बच्चे समाधान स्वरूप हो जाओ, और समाधान है ये बाबा की याद में, योग युक्त स्थिति बना के रहो, शुद्ध श्रेष्ठ संकल्पों के बहुत अच्छे घेरे में रहो, सरल स्वभाव बना करके सरलता से पार हो जाओ। तो जैसे दादियों ने, बाबा ने, सबने पार किया, हर परिस्थिति को पार करके आज यज्ञ को यहाँ तक ले आए, और अभी कितनी बातें आएंगी, सब खत्म हो जाए, कोई परवाह नहीं कर, बेगमपुर के बासा बन जाओ, ठीक है, करेंगे ना ऐसा, भट्टी से कुछ तो ले जाएंगे संकल्प, कोई भी ऐसे साधारण संकल्प हो, स्वाहा समाप्त, तब तो कहेंगे भट्टी कहे थे कुछ परिवर्तन हो करके आए। तो अभी हम सभी योग अग्नि को प्रज्वलित करें, ठीक है, कोई भी समस्या है ना, चिंतन नहीं करना ज्यादा, उसको भले कागज पर लिख के बाबा के कमरे में डाल देना, बाबा ये है हमारे आगे विघ्न, ये रुकावट है, तो बाबा अपने आप उसको ले लेगा। तो अभी हम सभी आधा घंटे के लिए, विशेष बाद में बहन जी वो कराएंगी, आधा घंटे के लिए हम दो स्थितियों में बैठेंगे, बैठ सकते हैं ना, बहुत पावरफुल। साधारण योग तो हम घर गृहस्थ में भी करते हैं, चलते फिरते भी करते हैं, लेकिन जो बाबा कहता है योग एक लाइट माइट संपन्न स्थिति है, ज्वाला स्वरूप की स्थिति है, जिस ज्वाला स्वरूप की स्थिति में सब संस्कार सब समस्याएं स्वाहा हो जाएं, समाप्त हो जाएं, इसके लिए मन और बुद्धि की बहुत एकाग्रता चाहिए, बहुत स्थिर माइंड चाहिए, किसी भी प्रकार के संकल्प की हलचल नहीं। मैं एक बहुत शुद्ध पवित्र चमकता हुआ दिव्य सितारा इस भ्रकुटी आसन पर विराजमान, मैं मस्तक मणि हूं। बाबा का आह्वान करो और अनुभव करो, बाप दादा वतन छोड़ करके मेरे पास आ गए हैं, और इन दोनों नैनों के बीच मैं आत्मा चमक रही हूं, और दोनों साइड में शिव बाबा और ब्रह्मा बाबा त्रिमूर्ति बन करके योग करो। आज शायद पहली बार करेंगे, किया हो तो अच्छी बात है। ऊपर जाने की मेहनत तो हम सब करते हैं, क्या ऊपर वाले को नीचे नहीं ला सकते? तो आज हम सभी इस देहभान से डिटैच होकर के, मैं एक शुद्ध पवित्र चमकता हुआ दिव्य सितारा हूं, इस भ्रकुटी आसन पर विराजमान एक चमकती हुई मणि हूं, चिंतन करो, अपने माता पिता को, शिव बाबा और ब्रह्मा बाबा दोनों ही बाप दादा, जो सूक्ष्म वतन में वर्तमान समय हम सबका इंतजार कर रहे हैं, बाप दादा समय पर समय अपने बच्चों के पास चक्कर लगाने आते हैं, हम सभी इस सभा में अपने भ्रकुटी आसन को इतना स्वच्छ निर्मल बना करके बैठे, कोई हलचल के संकल्प न हो, तो बहुत पवित्र शुद्ध वाइब्रेशन, उनका आना माना आज शांति का सागर, प्यार का सागर, सुख का सागर, आनंद का सागर, उसी बाबा अगर यहां पर आके बैठ जाए, और उनके समान एक बहुत दिव्य अलौकिक शक्ति आदि देव प्रजापिता संपूर्ण स्वरूप वो आत्मा अगर यहां आके बैठ जाए, उसकी शक्तियां कैसे वायुमंडल में फैलेंगी? आप लोग अव्यक्त बाबा से मिले हैं, जानते हैं, जब बाबा का अवतरण होता है, दादी के तन में आते हैं, आंख खुलती है, चारों तरफ से सन्नाटा हो जाता है, 20-25-30 हजार लोग चाहे बाहर बैठे हैं, चाहे गैलरी में बैठे हैं, जहां कहीं बैठे हैं, सब लगन में मग्न हो जाते हैं। एक आसन पर बाबा आए, वो पवित्रता की शक्ति आई, शांति की शक्ति आई, और वो शक्ति दादी के तन को लुप्त कर देती, बैठा यही शरीर है लेकिन सब अनुभव करने लगते हैं, मैं बाबा के सन्मुख हूं। हम सभी भी उस शांति के सागर को, प्यार के सागर को बहुत दिल के स्नेह से आह्वान करें और कहें, बाबा इस भ्रकुटी आसन पर थोड़ा समय भी बैठकर मुझ आत्मा को अपनी समानता का अनुभव कराओ, जैसे आप शांति के सागर हो, मैं आपका बच्चा शांत स्वरूप हूं, आप प्यार के सागर हो, मैं आपका बच्चा प्यार की मूरत हूं, मैं आनंद स्वरूप हूं। चिंतन करो और उसके अनुभव में खो जाओ, उन सब दिव्य शक्तियों को अपने मस्तक पर ही अनुभव करो, और भ्रकुटी आसन पर अपने चमकते हुए स्वस्वरूप को देखो, खो जाओ बाबा के प्यार में। आकारी स्वरूप में स्थित होकर अनुभव करो मुझ आत्मा के चारों ओर एक बहुत सुंदर लाइट का शरीर सूक्ष्म शरीर है। मैं आत्मा उस लाइट के शरीर से बाप दादा को साथ लेकर अव्यक्त वतन में पहुंच गई हूँ। ये फरिश्तों की दुनिया, ये चमकीला वतन हमारा अपना निजी घर है। बहुत ऊंचे स्थान पर खड़े होकर बाप दादा और एडवांस पार्टी की आत्माओं के साथ इस सारे ग्लोब को मैं शक्तियों की सकास दे रहा हूँ। वो लाइट की दिव्य शक्तियाँ हम सबके मस्तक से निकलकर इस सृष्टि मंच पर सुख और शांति का वाइब्रेशन फैला रही है। मैं डबल लाइट फरिश्ता हूँ। मैं सर्व शक्तियों से संपन्न मास्टर ज्ञान सूर्य हूँ।